हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय पहले स्कंद से भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम इस विषय पे इसमें चर्चा करेंगे कि गुणगान करना और मस्का लगाना, चापलूसी करना, इसमें क्या फर्क है। तो इसके पहले थोड़ी पार्श्वभूमि जो है, भागवतम के प्रथम स्कंद में भगवान की लीलाओं का कुछ हद तक वर्णन होता है और इसका विस्तारित वर्णन दशम स्कंद में होगा। तो ये भागवतम के जो हृदय है दशम स्कंद, उसकी एक झलक प्रथम स्कंद में दी जा रही है, पर ये दोनों अलग प्रसंग है। जो पांडवों की लीला है, पांडवों के साथ भगवान की लीला है और द्वारकावासियों के साथ जो लीला है, इसका पुनः वर्णन दशम स्कंद में नहीं आता है। जो घटना यहाँ पे बताई गई है वहां पे नहीं बताई गई है, पर वो यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भागवतम का कथन किस प्रकार से हुआ, कैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज मिले और वो दोनों किस तरह से महान व्यक्ति थे, यह बताने के लिए। पहले सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ और फिर वे कैसे ब्रह्म ज्ञानी थे और बाद में वे कैसे भक्त बन गए, इसका वर्णन 7वें अध्याय में आता है, वो संक्षिप्त रूप में आता है। पर 8वें अध्याय से भागवतम के अंत तक, भागवतम के पहले स्कंद के अंत तक, ये सारे घटनाओं का वर्णन इसलिए है कि कैसे परीक्षित महाराज कितने महान व्यक्ति थे, कि उनके पूर्वज कैसे थे, कितने भगवान उनको प्रिय थे और कितने वे भगवान के महान भक्त थे, पांडव जो थे, वह सब वर्णन प्रथम स्कंद में हो रहा है। और प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय जो है वह है सुखदेव गोस्वामी का आगमन, और फिर अगले स्कंद में, दूसरे स्कंद में शुरुआत होती है प्रश्नों के उत्तरों की भी। तो फिर यहां पे जो वर्णन हो रहा है, कैसे भगवान पांडवों को बहुत प्रिय थे और जबकि द्वारकावासी उनके पत्नी, उनके सदस्य थे, परिवार के सदस्य थे, उनको छोड़कर भी भगवान द्वारका से हस्तिनापुर जाया करते थे। और यह सब वर्णन इसलिए हो रहा है कि अभी देखिए यहाँ पे एक अध्याय भगवान का द्वारका में आगमन है, पर तुरंत उसके बाद में धृतराष्ट्र और विदुर का धृतराष्ट्र को संदेश, और फिर पांडवों का, भगवान कृष्ण का जो तिरोभाव है उसका भी वर्णन प्रथम स्कंद में अधिक नहीं आता है। सिर्फ उसका प्रभाव पांडवों पे क्या हुआ उसका वर्णन आ रहा है। तो ये सब क्या, किसे क्या बताया जा रहा है कि द्वारकावासियों को भगवान इतने प्रिय थे, फिर भी भगवान उनको छोड़कर पांडवों के साथ बार बार रहा करते थे। तो पांडव कितने महान है यह इन सब प्रसंगों से बताया जा रहा है। पर यहां पे भगवान पांडवों के इजाजत लेकर फिर अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और सभी द्वारकावासी बहुत आनंदित हो गए हैं और आनंदित होकर वे द्वार पे भगवान का स्वागत करने आ गए हैं। और जब वे स्वागत करने आए हैं तो यहाँ पे तीन श्रेणियों के लोगों के बारे में बताया गया है। स्वयं च गुरु भी, स्वयं मतलब भगवान आ रहे, गुरु भी मतलब जो उनके वरिष्ठ समा, उनके वरिष्ठ रिश्तेदार वगैरह है, वो सब आए हैं, और फिर विप्रई, फिर ब्राह्मण भी है। और किस प्रकार के ब्राह्मण है ये, सदारैर स्थविरैर। स्थविरैर मतलब कि जैसे दो प्रकार के जीव बताए गए हैं वैदिक शास्त्र में, कि स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो हिल फिर सकते हैं, जो हिल फिर नहीं सकते हैं, जैसे कि पेड़ है, और जंगम मतलब जो हिल फिर सकते हैं, जो जानवर है, पंछी है और मानव भी है। तो जो मानव है वो जंगम होते हैं, पर ऐसे बताया गया कि ये जो ब्राह्मण थे ये इतने वृद्ध हो गए थे कि वृद्धता के कारण वो लगभग स्थविरैर हो गए थे, वो चल नहीं पा रहे थे ज्यादा, पर फिर भी भगवान से इतना प्रेम था उनका कि वे भगवान से मिलने आ गए। और जब भगवान से मिलने आ गए तभी उन्होंने क्या देखा कि वो भगवान का सुंदर दर्शन करके वे भगवान का गुणगान करने लग गए। पर ये जो गुणगान क्या था, वहां भागवत में बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया, आशीरी भी। तो जो ब्राह्मणों का गुणगान था वो एक प्रकार से आशीर्वाद था, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो पहले श्रेणी के जो लोग थे वो उनके ही रिश्तेदार थे, गुरु भी, फिर स्थाविरई विप्रई, और तीसरे जो थे वंदिभिज, वंदिभिज मतलब वंदिभिज अन्यईर, बाकी सब लोग थे वो उनकी वंदना कर रहे थे। तो ब्राह्मण जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे वो उनकी जो कर रहे थे वो भी उनका गुणगान कर रहे थे, पर वास्तविक जो गुणगान वो क्या था, आशीर्भी, वो एक आशीर्वाद के समान था। और इस तरह से सब उनका गुणगान करते हुए क्या आविशतपुरम, वे द्वारकापुरी में प्रवेश कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी यहां पर जोर देते हैं ब्राह्मणों पे और वे तात्पर्य में, और वे बताते हैं कि कैसे जो ब्राह्मण जब गुणगान करते थे राजाओं का, तो वह गुणगान वास्तव में बाह्य रूप से ऐसे लग सकता है कि वह जैसे हम भौतिक जगत में लोग किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो किसी एक व्यक्ति से कुछ काम निकालना है तो उसका गुणगान करते, आप इतना हो, आप ये हो, आप वो हो, आप वो हो, और उसका गुणगान करके फिर अपना काम निकाल लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे लग सकता है। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क यह है, दो चीजें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो राजा थे वे वास्तव में गुणशील थे, गुणवान थे वे, और उनके वास्तविक गुणों का जब वर्णन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, तो वो वास्तव में चापलूसी या मस्का लगाना नहीं है। और दूसरी बात जो है, जो यहां पर बताया गया है कि आशीर्वाद भी, कि जब कोई जो पुण्यवान भक्तिपूर्ण व्यक्ति है वह किसी और का गुणगान करता है तो वह गुणगान एक प्रकार से प्रोत्साहन होता है, और उस प्रोत्साहन में आशीर्वाद होता है। अगर कोई वरिष्ठ भक्त हमसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे भक्त हो, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने जरूर हमें कुछ भक्ति के गुण देखे होंगे इसलिए से बोल रहे हैं, पर साथ साथ उसमें यह भी गुण है, उसमें यह एक प्रकार से आशीर्वाद है कि हम अच्छे भक्त बन सकते हैं उनके प्रोत्साहन से, उनके आशीर्वाद से। तो उसमें दोनों के, जो गुणगान कर रहा है और जो गुणगान स्वीकार कर रहा है, दोनों की चेतना महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में जब गुणगान होता है तो वास्तव में दोनों स्वार्थ की चेतना में होते हैं, जो गुणगान कर रहा है उसको उस वास्तव में उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, वास्तव में उससे अपना काम करवाना है, और वो व्यक्ति को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और वो उसको उसके मुंह पे उसका गुणगान करेगा और उसके पीठ में उसको बहुत अनाप शनाप कहेगा। तो क्यों? क्योंकि वास्तव में भौतिक जगत में किसी के लिए हृदय से आदर रखना मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा एक स्पर्धात्मक भाव होता है, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं वो सब सीमित है, इसीलिए अगर किसी और चीज को कुछ व्यक्ति को कुछ मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। अगर कोई विद्यालय में कक्षा में कोई विद्यार्थी है वो पहला आता है तो बाकी विद्यार्थी भले ही उसको उसका अभिनंदन करेंगे, फिर भी वो उनके हृदय में ईर्ष्या होगी कि मैं पहला आता तो कितना अच्छा होता। तो वो जो अभिनंदन होता है कई बार हृदय से नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्पर्धात्मक भाव के कारण ईर्ष्या आती है। तो ये स्वार्थ की भाव होती है जो गुणगान कर रहा है उसमें, तो वह गुणगान इसलिए करता है क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं उसकी ईर्ष्या कर रहा हूं, या दिखावे के लिए करते हैं, या फिर उससे कुछ मदद चाहते हैं। तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो मुझे भी बता दो तो मैं अगली बार पहले आ जाऊंगा। तो जो भी हम करते हैं, जो भी लोग करते हैं भौतिक चेतना में, वो स्वार्थ से हमेशा दूषित होता है। कभी कभी न केवल द्वार स्वार्थ से दूषित होता है पर स्वार्थ से ही भरा होता है पूरा। दूषण मतलब और भी चीजें हैं और स्वार्थ भी है, पर केवल स्वार्थ से ही भरा होता है कभी कभी। तो इसके और जो व्यक्ति गुणगान स्वीकार कर रहा है वह व्यक्ति भी वास्तव में मिथ्या अहंकार की भावना में होता है, और वह सोचता है कि मैं कितना महान हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना बड़ा हूं। तो यह जो भाव है भगवद गीता में बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कि जो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, अगर मुझे अच्छा गाना आता है, मुझे अच्छा बोलना आता है, मैं कुछ अच्छी चीजें कर सकता हूँ, तो वास्तव में यह किस तरह से कर रहा हूँ, मैं मेरे शरीर से कर रहा हूँ और मन की प्रवृत्तियों से कर रहा हूँ। तो ये शरीर और मन मैं नहीं हूँ, वास्तव में यह एक औजार है जो प्रकृति ने और भगवान ने मुझे दिया है और वह अपने योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो हमने जरूर उसमें कुछ प्रयास किया होगा, पर वास्तव में जो गुण है वो हमारे नहीं है, प्रकृति कार्य कर रही है। एक बार एक गांव में बड़ा आलसी व्यक्ति था, और जब वो आलसी व्यक्ति, वो उसको कुछ भी काम हो घर से निकलने को भी तैयार नहीं हुआ करता था, हमेशा घर में बैठा रहता था। और एक दिन गांव वालों ने देखा कि वो एक घोड़े पे बैठ के बहुत तेजी से चल रहा है, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और लोग पूछे, अरे भाई आज क्या बात है, इतना तेजी से क्यों चल रहे हो? तो बोला, मुझे क्यों पूछ रहे हो, घोड़े को पूछो। तो वास्तव में जो भौतिकवादी व्यक्ति है वह कभी कभी लगता है कि वह बहुत कार्य कर रहा है, पर अगर असलियत देखेंगे तो वो जो कार्य है उसके प्रवृत्ति के अनुसार ही हो रहा है। कभी कभी जब वो प्रवृत्तियां उसकी इच्छा के खिलाफ जाती है तो समझ आता है क्या हो रहा है ये, पर कभी बहुत बार वो समझ में भी नहीं आता है। तो इसीलिए वो व्यक्ति भी मत्याहंकार पे होता है, भावना पे, तो जो गुणगान स्वीकार कर रहा है, और उस जब ऐसे ऐसे गुणगान से केवल उसका मोह जो है और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। तो पर इसके अलावा दूसरी भाव में भी गुणगान हो सकता है, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव है, जो स्वार्थ है, हम एक तरह से देखें कि भौतिक चेतना में स्वार्थ होता है, पर जो है मानवीय भावनाएं भी होती है। अगर कोई बालक है, वह पहले बार चलने लगता है तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको शाबाश की देते हैं, तालियां बजाते हैं, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि इसमें भी स्वार्थ है, पर यह एक तरह से जो विश्लेषण है बड़ा निष्ठुर है। हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ पे माता पिता का भाव एक तरह से जो होता है अपने बालक को प्रोत्साहन करना है। तो इसीलिए जो हम भौतिक और आध्यात्मिक चेतना में विभाजन करते हैं, उस समय हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ मानवीय भावनाएं हैं जो वह भले ही आध्यात्मिक ना हो, पर वह हमेशा पूर्णतया मिथ्याहंकार के भावना पे भी नहीं होती है, क्योंकि उस समय दूसरे व्यक्ति की भी चिंता होती है, दूसरे व्यक्ति के कल्याण की इच्छा भी होती है। तो ऐसा प्रोत्साहन जो है वह हम सबको एक दूसरे से करना जरूरी है, जिससे कि हमें हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, जो हमें कभी कभी हार में सामना करना पड़ता है किसी परिस्थिति में, उसमें हम हौसला हारे बिना चल सकते हैं आगे। तो यह जो है, तो एक क्या है मिथ्याहंकार के स्तर पे है, दूसरा जो है वह कि हम थोड़ा बहुत भौतिक स्तर पे क्यों ना हो, पर मानवीय स्तर पे वह प्रेम है, दूसरे के लिए चिंता है, और उसके करिए हम उनको प्रोत्साहन करने के लिए कार्य करते हैं। और फिर इससे ऊपर है निस्वार्थ भाव, वास्तव में क्या है कि हम खुद समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और यह व्यक्ति भी जो है भगवान का अंश है, और उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में प्रोत्साहित करने के लिए हम अगर कुछ उनका गुणगान करते हैं तो वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जब भक्ति करते हैं तो अनेक प्रकार से विरोध आते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जैसे अगर नदी का प्रवाह एक दिशा में हो और हम तैर रहे हैं दूसरी दिशा में, तो फिर वो तैरने के लिए हमेशा संघर्ष होता है। तो उसी तरह से भौतिक जगत में जो प्रवाह होता है वह हमेशा भौतिक चीजों की ओर होता है, भौतिक आकर्षणों की ओर हम खींचे जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें संघर्ष करना पड़ता है कि हम भगवान का स्मरण करें, भगवान की सेवा में बने रहे, और इस संघर्ष में हम सबको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। और इसीलिए जो वैष्णव संस्कृति है उसमें एक दूसरे का गुणगान करना यह बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और हम यह देखते हैं श्रीमद् भागवतम में न केवल भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, पर उसी तरह से श्री चैतन्य चरितामृत में जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो भक्त एक दूसरे का गुणगान करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो चीजें बोलते हैं, एक तो वो एक साधारण जो संस्कृति है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रियों का गुणगान कर रहे हैं, और दूसरे इस परिस्थिति में क्या है कि ये क्षत्रिय जो है वो वास्तव में क्षत्रिय नहीं है, वे भगवान स्वयं है, और भगवान तो उत्तम श्लोक है, वे सब गुणों सब पूर्णतया सब प्रकार के गुणगान के लिए पात्र है। वो उरुगाय, तो ऐसे बताया गया कि उरुगाय उनके लिए जितना भी गुणगान करे उतना कम ही है भगवान के लिए। तो भगवान के गुणगान के बारे में जो यहां पर बताया जा रहा है वह प्रभुपाद जी एक विशेष प्रसंग है, एक विशेष परिस्थिति है, पर प्रभुपाद जी उस परिस्थिति पे जोर नहीं दे रहे, जो संस्कृति है जिसमें हो रहा है उस पे जोर दे रहे हैं। और उस संस्कृति में बता रहे हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं, और हम यही देखते हैं कि भागवतम में कई जगह पे आता है जब स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे जो तो मैं बता, तो गुणगान करने करते समय किस प्रकार से हमें गुणगान करना चाहिए कि जो हम शिक्षाष्टकम में तीसरे श्लोक में बताया गया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो यहाँ पे कीर्तनीय सदा हरि जो बताया गया है कि सदा भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए। तो कभी कभी हम प्रयास कर सकते हैं कि मैं हमेशा जितना समय जितना हो सकता है हमेशा मैं हरे कृष्ण जप करूं, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए वो, पर यह हमेशा भगवान का कीर्तन करना यह केवल एक यांत्रिक प्रयास से हम यशस्वी नहीं हो सकते। तो उसके लिए एक चेतना का परिवर्तन जरूरी है, और वो चेतना का परिवर्तन जो जरूरी है वह इस श्लोक के पहले तीन पंक्तियों में बताया गया है कि जब हम नम्र सहनशील और दूसरों को मान देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और खुद मान स्वीकार करने के उत्सुक नहीं होते, तब एक स्वाभाविक रूप से हम भगवान का कीर्तन सदैव कर सकते हैं। तो भक्त विनोद ठाकुर अपने गीत में बताते हैं कि सबको सम्मान देने के लिए मैं सबको सम्मान दे सकूं इसके लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। क्या है वो श्लोक? सकल समान कोरिते शक्ति दिया देहो नाथ यथा यथा। तो धन्यवाद। सकल सम्मान, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सबको सम्मान करने के लिए किस प्रकार से सम्मान, यथायथ उस व्यक्ति के पद के अनुसार, इसके लिए आप मुझे शक्ति दीजिए। साधारणतया हम जब भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं ऐसे कार्य कर सकूं जाके सब लोग मेरा सम्मान करें। तो हमारा भाव जो होता है, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों की सेवा के लिए हम बहुत बड़ी चीजें कार्य करना चाहते हैं तो अच्छा है वो, पर केवल वो अगर हम हमारे खुद के गुणगान के लिए चाह रहे हैं तो वह अनुचित है। और यह जो है खुद बहुत बड़े बड़े कार्य करना यह अच्छा है भगवान की सेवा में, क्योंकि हमें चाहिए भी कि भगवान का जो मिशन है वो हम बहुत बहुत अच्छी तरह से विस्तार कर सके उसका। पर यह जो शक्ति है यह इसके लिए शक्ति लगती है, पर इससे अधिक शक्ति जो लगती है वह है दूसरों का सम्मान करने के लिए। क्योंकि क्या है, जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो सम्माननीय हो जिससे कि हमें आदर मिलता है, वो भले ही हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भले ही भगवान की सेवा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, पर उस समय क्या होता है उसमें हमारा मिथ्या अहंकार भी उसमें संयुक्त होता है। तो क्या होता है, जब हम को बड़ा कार्य कर रहे हैं तो भगवान की सेवा करने की इच्छा उसमें सिर्फ नहीं है, भगवान की सेवा करने की इच्छा के साथ साथ हमारी भी महिमा दुनिया को दिखाने की इच्छा है उसमें। तो ऐसे नहीं है कि इसके कारण ऐसे विचार से हम वो कुछ भगवान की सेवा में अच्छा न करे, वो क्या है हमारे स्तर पे ये न के न प्रकार मन कृष्ण निवेशित, किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा करनी है हमें। पर तो क्या होता है जब हम को बहुत बड़ा कार्य करते हैं तो उसमें हमारा मिथ्याहंकार हमें संयोग करता है, हमें सहयोग करता है, और इसीलिए उसको उतनी शक्ति नहीं लगती है जितना कि हम दूसरों को आदर देने के लिए लगती है। कि दूसरों को आदर देने के समय क्या होता है, हमारा मिथ्याहंकार उसका विरोध करता है, और उस मिथ्याहंकार का विरोध करके किसी का गुणगान करना जब होता है तो वह आसान नहीं होता है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि और वो यहां पे ये भी नहीं कह रहे कि दूसरों का गुणगान करने के लिए शक्ति दीजिए, वह कहते हैं दूसरों का सम्मान करने के लिए शक्ति दीजिए। अभी गुणगान और सम्मान इसमें फर्क क्या है, गुणगान या शब्दों से कहना है, सम्मान मतलब अंदर से वो भाव होना, दूसरों के प्रति आदर का भाव होना। कभी कभी हम भक्तों से भी मिलते हैं तो हम एक रीति रिवाज के रूप में दूसरों का गुणगान करते हैं, आप इतने अच्छे भक्त हो, आप ये हो, आप वो हो, और उसमें भले ही हमारा कोई कभी कभी हमारा स्वार्थ भी होता है, कभी कोई भक्त हमारा गुणगान करने लगता है तो हम सोचने लगते हैं इनको कुछ सेवा चाहिए होगी हमसे,
तो इसीलिए ये जैसे बोल रहे हैं।
तो वास्तव में अब अगर वैसे है भी तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो हमें भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं। पर जो है कि हमारी जो अंतरंग चेतना होती है वह कुछ समय तक हम छिपा सकते हैं, पर धीरे धीरे वह दूसरों को समझ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति हम देखते हैं, कोई हमें दूसरों के प्रति सही में उनके कल्याण की चिंता है, उनसे स्नेह है और उनके प्रति आदर है, तो वह जो है धीरे धीरे समझ में आ जाता है, और अगर वो नहीं है तो वह भी समझ में आ जाता है। केवल हमारे जो वचन है और बोलने की पद्धति है उससे ही हम दूसरों से संपर्क नहीं करते हैं, हमारे जो अंतरंग चेतना है उससे भी हम दूसरों से आदान प्रदान करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, उनके हृदय की शुद्धता इतनी होती है उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक ऐसा संशोधन कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे ही हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते, उसके अलावा अनेक पद्धतियां हैं जिससे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, और यह कैसे होता है वह उनको समझ में नहीं आता है। पर यह है, मैं इसके दो उदाहरण दूंगा और फिर हमारा जो भाव है उस पर हम केंद्र देंगे। तो अभी कई जगह पर दुनिया में ऐसे जगह है जहां पर भूकंप बहुत होते हैं, तो अभी जब भूकंप कब होगा कैसे होगा इसका भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। हमारे पास जो यंत्र है कितना बड़ा भूकंप हुआ बता सकता है, पर भूकंप होगा कि नहीं वह बताना बड़ा मुश्किल है। तो वैज्ञानिक देख रहे हैं कि कई बार जब कहां भूकंप होता है तो वहां जो जानवर होते हैं उनका जो बर्ताव है बदल जाता है, और यूरोप में ऐसा संशोधन हुआ है कि जो चींटियां होती हैं जब भूकंप होता है उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद तक वो चींटियां अपने जो घर होते हैं उसके अंदर जाते ही नहीं है, उसके बाहर घूमते रहते हैं। और अभी यह कई भूकंपों तक उन्होंने देखा है, और उन्होंने क्या देखा कि जितना बड़ा भूकंप होता है उतना वो चींटियां अपने घरों से दूर रहती है। तो अभी उनको समझ में, चींटियों को कैसे समझ में आता है भूकंप होने वाला है, और ये एक बार होगा, दूसरे बार होगा, तीसरे बार होगा, पर ये अगर सैकड़ों बार हो रहा है और एक चींटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो सब ऐसे अभी एक ही, अगर हम इस बैलगांव में ही चींटियों की लोक संख्या बनाएंगे तो कितना होगा, कितने सारे हैं। और ऐसे नहीं है कि अगर एक चींटी के पास कुछ विशेष बुद्धि है वो चींटी समझ जाती है और बाकी सबको ईमेल कर देती है, नहीं एसएमएस कर देती है, उनमें इस प्रकार से कोई संदेश भेजने की सुविधा भी नहीं है, मतलब वो चींटियां स्वयं समझ जाती है। तो कैसे समझती है वो उनको पता नहीं है, वो कुछ तर्क, वो कुछ ऐसे मनोगढ़ धारणा करते हैं कि वो चींटियों के दिमाग में कोई चुंबक जैसी शक्ति होगी, और जब भूकंप होता है तो उसमें से कुछ चुंबक जैसी शक्ति निकलती होगी, और ये दोनों जब समझ में आते तो चींटियों को समझ जाता है कि कुछ यहाँ पे खतरा होगा। तो अभी यह सब मनोगढ़ बात है, पर यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि इस सृष्टि में ऐसी चीजें हैं जो हम हमारी केवल इंद्रियों से समझ नहीं सकते हैं। दूसरा, वैज्ञानिकों ने एक मानवों के साथ प्रयोग किया है कि कुछ एक व्यक्ति यहां पे बैठा है, जैसे मान लिया मैं बैठा हूं यहां पे और मेरे पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, और वह कभी मेरे ओर घूर के देखता है और कहीं कोई और देखता है, और मैं उसको देख नहीं सकता हूं, पर मुझे पूछा जाता है कि आप अंदाजा लगाओ क्या वो व्यक्ति आपकी ओर घूर के देख आपकी ओर देख रहा है नहीं। तो अगर यह केवल अंदाजे की बात होगी तो फिर क्या होगा, 50% समय में सही होगा, 50% समय में गलत होगा। पर वैज्ञानिकों देखा है कि हर एक व्यक्ति जो है उसका जो सही होना का सही अंदाज जो है वो 50% से अधिक होता है, 60% होता है, 70% होता है, कुछ लोगों के लिए 90% होता है। वो कभी कि वो लोग तो इसका इसके कई वीडियो क्लिपिंग भी है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे कहता है कि देख रहे हो, हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, तो वहां पे वो बता रहे हैं हाँ नहीं, और यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अब ये किस तरह से होता है, हमारे सिर के पीछे तो आंखें नहीं है, पर ऐसे क्या है जो सूक्ष्म शरीर है जो, तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ये समझना मुश्किल है, पर जो वैदिक विज्ञान है उसमें बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर जो है उसकी शक्तियां जो है वह स्थूल शरीर से अधिक होती है, और सूक्ष्म शरीर की भी आंखें होती है, जैसे स्थूल शरीर की आंखें होती है सूक्ष्म शरीर की भी आंखें होती है, और अलग अलग लोगों के अपने अपने कर्म के अनुसार यह जो सूक्ष्म आंखें होती है वो कम या अधिक विकसित होती है, तो उससे समझ में आता है। और इस तरह से ये जो उदाहरण, दो उदाहरण चींटियों का और मानवों का, इससे हम क्या समझते हैं कि हम जब एक दूसरों से बातचीत करते हैं, दूसरों से आदान प्रदान करते हैं, तो केवल हम जो बोल रहे हैं उससे लोग उससे ही केवल संबंध प्रस्थापित नहीं होते हैं, और न केवल किस तरह से बोल रहे उससे भी होते हैं, वास्तव में हमारी जो अंतरंग चेतना होती है वह धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाती है। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में हमारा हित चिंतक है तो वह व्यक्ति की जो हमारे लिए कल्याण की इच्छा है वो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाती, और दूसरों को भी हमारे बारे में समझ में आ जाता है। तो इसीलिए वास्तव में केवल हमें दूसरों का गुणगान नहीं करना है, दूसरों का अंतरंग रूप से सम्मान भी करना है। तो वो सम्मान किस तरह से हम कर सकते हैं, यह समझ के कि वास्तव में भक्त कितने दुर्लभ है दुनिया में, भक्तों में कुछ गुण कम हो सकते हैं, हम देखते हैं कि ये भक्ति शायद ये भक्त आलसी है, ये भक्ति क्रोध हो जाता है, ये भक्ति ऐसा है, ये भक्त वैसा है। अभी यह जो है कुछ कमियां हम भक्तों में हो सकती है, पर वास्तव में जो भक्तों का प्रधान लक्षण जो है कृष्णैक शरणम, कि इस दुनिया में लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं और उनमें से कुछ केवल हजार लोग जो है, हजारों में संख्या में लोग गंभीरता से साधना भक्ति कर रहे हैं, और उनमें से ये व्यक्ति है, तो इसलिए वो कितने दुर्लभ है। तो यह देखकर ही हम एक भक्तों के दूसरों भक्तों के बारे में सकारात्मक भाव ला सकते हैं, और वह सकारात्मक भाव के साथ जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उससे हमारे जो संबंध है वह और अच्छे बन जाते हैं। भले ही बातचीत में हम ज्यादा कुछ गुणगान न करें, फिर भी अगर सम्मान हो अंदर तो उससे भी धीरे धीरे जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ सम्मान अंदर करना है और गुणगान बाहर से कभी नहीं करना है, अंदर भाव है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम्हारी कमी है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें। हमें वास्तव में दूसरे का गुणगान भी करना चाहिए, और वो गुणगान क्यों करना है ऐसे नहीं है कि रीति रिवाज के रूप में, वास्तव में हमें देखना है कि ये भक्त में कुछ गुण है, और अगर वो गुण है तो अब ये गुण किस प्रकार, कुछ आध्यात्मिक गुण हो सकते हैं, कुछ भौतिक गुण हो सकते हैं। वास्तव में अगर कोई भक्ति कर रहा है तो सब गुण जो है वो एक प्रकार से आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान की सेवा में ही वो गुण लगाए जा रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। पर किसी में कुछ भौतिक गुण भी होते हैं तो उनका भी विकास करना जरूरी है। कोई व्यक्ति अच्छा गाता भी है तो भी कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा अनुशीलन करता है किसी भी गुण का, तो उसमें प्रयास लगता है, उसमें अभ्यास लगता है और उससे ही व्यक्ति और अच्छी तरह से वो कार्य कर सकता है। और वह प्रयास, वह अभ्यास करने के लिए उस व्यक्ति को प्रोत्साहन चाहिए, तो प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। और यह प्रभुपाद जी की विशेषता थी, राधा गोकुलानंद भगवान की जय। यह प्रभुपाद जी की विशेषता थी कि प्रभुपाद जी, हम एक तरह से प्रभुपाद जी का एक ही पहलू देखते हैं कि प्रभुपाद जी लोगों को कभी फूल्स एंड रास्कल्स, मूर्ख कहा करते थे, पर प्रभुपाद जी का जो स्नेहपूर्ण प्रेमपूर्ण भाव था उससे वे सबको प्रोत्साहित करते थे भक्ति में। और अगर प्रभुपाद जी लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते थे, नहीं कर रहे होते, तो जो लोगों को भगवान के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं थी, वह लोग भगवान को क्यों अपना जीवन समर्पित करते। तो प्रभुपाद जी में यह भाव था कि वह हर एक व्यक्ति को ना, वो उनके जो बाह्य आवरण है कि यह व्यक्ति इस तरह से यमलेच्छ है या शूद्र है या ऐसा है या वैसा है, वह सब नहीं देखते थे। उसके परे वह व्यक्ति देखते थे कि यह व्यक्ति आत्मा है और आत्मा के स्तर पे यह भगवान का भक्त है। भले ही व्यक्ति अभी आवृत्त हो, वह भक्ति जागृत होने की क्षमता सब में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करये उदय। प्रभुपाद जी कई बार ये श्लोक बताया करते थे, और खास करके जब वो अपने परदेशी भक्तों को भारत में लेके आते थे, तभी वे अपने भारतीय लोगों को वो बताते थे कि कैसे ये लोगों को कुछ भी पता नहीं था पर फिर भी ये भक्त कैसे बन गए हैं। प्रभुपाद जी खुद से नहीं लिया करते कि मैंने कोई जादू किया है, वो कहा करते थे कि वास्तव में कृष्ण भक्ति सब में है, अगर उनको श्रवण करने कीर्तन करने का मौका दिया जाए तो उससे वे सब भक्त बन जाएंगे। तो इसीलिए ये प्रभुपाद जी की विशेषता थी। चाणक्य पंडित का जो श्लोक है वो प्रभुपाद जी कई बार बोला करते थे कि अगर सोना है वह अगर कचरे में भी पड़ा है तो उस सोने को कचरा निकाल के हमें लेना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान का अंश है। मैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हर एक जीव जो है वो मेरा अंश है। तो भगवान जो है वो पूर्ण सुवर्ण के समान है और हर एक जीव है वो एक सुवर्ण का अंश, सोने के अंश के समान है वो। तो हमारा जो भाव, हमारी जो सेवा एक तरह से क्या है, हमें ग्रंथों का वितरण करना है, विग्रहों की सेवा करनी है, प्रचार करना है, पर यह सब का भाव क्या है, यह सब का उद्देश्य क्या है कि जो हर एक व्यक्ति अंदर से सुनहरा है और बाहर से जो कुछ गंदगी का आवरण लग गया है, तो वो गंदगी का आवरण निकाल के वो जो असली सोना है उसको बाहर लाना है। और वह लाने के लिए हमें दूसरों को मार्गदर्शन देना है। मार्गदर्शन हम देते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, उससे आप समझोगे कि वास्तव में आप क्या हो असली में। और अभी आपकी जो भी दशा हो गई है, कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, कुछ व्यसन हो सकते हैं, कुछ अनर्थ हो सकते हैं, पर यह सब बाह्य है, अंदर से वास्तव में आप शुद्ध हो, एक सोने के समान हो। और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसका उद्देश्य वास्तव में यह है कि यह हर एक व्यक्ति दिव्य है, हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, ये बताना। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में बताया जाता है कि सबसे बड़ा हितचिंतक, सबसे बड़ा दूसरों का सेवा करने वाला व्यक्ति कौन है, बताते हैं। बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि ऐसे नहीं बताया कि जो हमेशा भगवान का गुणगान करता है, वो सत्य है, पर वो बताते हैं कि जो व्यक्ति बाकी सब लोगों को अभय का आश्वासन देता है वह व्यक्ति सबसे बड़ा हितचिंतक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, ये अभय का आश्वासन का मतलब क्या है कि अभय का आश्वासन मतलब कि जब हम समझते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम, कि क्या जो व्यक्ति है कोई भी, हम सब आत्मा है और आत्मा जो है जो अविनाशी है, कोई भी शस्त्र उसको विनाश नहीं कर सकता है। दूसरे अध्याय के तीसरे 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं ये। तो इसका भाव यह है कि जब हम समझते हैं कि हम वास्तव में दिव्य है, अविनाशी है, आध्यात्मिक है, तो इससे अभय प्राप्त होता है। तो और यह तत्व ज्ञान प्रदान करना, यह सबसे बड़ा हित चिन्ह, सबसे कल्याण का कार्य है। तो कभी कभी लोग गीता सार कभी कभी कोई दुकानों में होता है और उसमें वो लिखते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो अभी ये मैं तो दर्जनों बार भगवद गीता पढ़ा है, कहीं भी ऐसा श्लोक नहीं मिला है मुझे।
कहां से आया ये श्लोक पता नहीं है।
और पूरे भगवद गीता का उद्देश्य हमें एक तरह से हमको कह सकते हैं कि निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं मया अध्यक्षिण प्रवृत्ति सुजते सचारातम उससे या सुरदम सर्वभूतानाम, कि जैसे भगवान सब चीजों के नियंत्रण में है और जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छा है, तो वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर यह गीता का सार नहीं है। गीता का सार क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं है, हमें क्या करना है उसके बारे में।
तो जो हो रहा है वो जरूर अच्छा हो रहा है, पर क्या हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भगवद गीता के अंत में भगवान अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, वो कहते हैं कि आप जो बता रहे हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं।
18वें 73वें श्लोक में बताते हैं वो, और वह अर्जुन का अंतिम वचन, अर्जुन के अंतिम वचन है भगवद गीता में। तो इसलिए यह भौतिक स्तर पर आश्वासन देने लोगों के जो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वह अगर परिस्थिति जरूरी है तो हम बोल सकते हैं, पर उसके साथ साथ हमें उस व्यक्ति को ज्ञान भी देना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह बहुत दुखी हो गया है, मैं इतना बीमार हूं, तो उसको हम आश्वासन दे सकते हैं कि ठीक हो जाएगा, पर साथ साथ उसको एक डॉक्टर के पास भी लेके जाना चाहिए ताकि ठीक होने के लिए कुछ मदद हो सके। सिर्फ बोलने से ठीक नहीं होने वाला है। तो उसी तरह से लोगों को आश्वासन देना है, पर आश्वासन के साथ साथ ठीक होने के लिए पद्धति भी देनी है। तो इसलिए हम क्या बताए थे, प्रभुपाद जी ने लोगों को मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन किस तरह से है, वह ऐसे डॉक्टर का एक ट्रीटमेंट देने के समान है। तो डॉक्टर बताते हैं कि आप ये दवाई लो, इससे आप ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम अंदर से शुद्ध है, पर वह जो शुद्धिकरण, वह शुद्ध भाव है, वह बाहर कैसे ला सकते हैं हम, वह भक्ति की पद्धति से ला सकते हैं। पर साथ साथ जैसे कोई मरीज होता है उसको दवाई देनी चाहिए, पर दवाई के साथ प्रोत्साहन भी देना चाहिए। क्योंकि क्या, कभी कभी जब बीमार हो जाते हैं व्यक्ति तो इतना हताश हो जाते हैं कि वो जो संघर्ष करना है, संघर्ष करने का भाव जरूरी होता है, तो वह अगर छोड़ देंगे तो व्यक्ति फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती जल्दी से। तो इसीलिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। तो अगर किसी भक्त में कुछ गुण है तो जरूर उनका गुणगान करना चाहिए। अगर गुण अभी गुण है नहीं भी, पर झलक भी है उसका गुण का, तो उस गुणों का भी गुणगान करने से क्या होता है, व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे कि वो अभी वो गुणों का और विकसित कर सके। और दूसरी ओर से जब हम स्वयं अगर हमारा कोई गुणगान होता है तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी मेरा ऐश्वर्य तुम्हें पता चल गया, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। हम क्या देखना चाहिए कि गुणगान जो है हमें एक प्रोत्साहन के रूप में देखना चाहिए कि भक्त देख रहे हैं कि इस प्रकार से मैं भगवान की सेवा में कुछ योगदान कर सकता हूं, इसीलिए मैं इस तरह से सेवा करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो वो गुणगान से हम, अगर कोई हमारा गुणगान करता है तो हम उससे हमारा अहंकार नहीं बढ़ेगा, और जब हम दूसरे का गुणगान करते हैं तो उससे हम चापलूसी नहीं कर रहे होंगे, हम वास्तव में उनको मदद कर रहे होंगे। और यह जो इस प्रकार की संस्कृति है, इससे जो भक्तों में संबंध है वह और सशक्त हो जाता है। और जब इस तरह से सशक्त संबंध होता है भक्तों में, तो जितनी हमारी भक्तों से आसक्ति बढ़ती है, भक्तों के समुदाय में हम और अच्छी तरह से स्थित हो जाते हैं, उतना हमारी भक्ति में भी हम प्रगति करते हैं। क्योंकि जो हमारा भगवान से संबंध है वह केवल भगवान से ही संबंध नहीं होता है, भक्तों से संबंध जुड़ता है, उससे भी भगवान से हमारा संबंध जुड़ता है। और यही फर्क है कनिष्ठ अधिकारी में और मध्यम अधिकारी में। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है सिर्फ मंदिर में आता है, दर्शन करता है और चले जाता है, पर मध्यम अधिकारी जो होता है वह भक्तों के महत्व को समझता है और भक्तों से मैत्री करता है। और मैत्री का एक प्रधान लक्षण है कि एक दूसरों की सराहना करना, एक दूसरों को प्रोत्साहन देना और गुणगान की पद्धति दे सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रियों का गुणगान करते हैं और इससे कि वे क्षत्रिय जो है भौतिक जगत में रह रहे हैं और भौतिक प्रलोभनों से वह हर तरह के आवृत है वो। तो जब कोई जो धार्मिक व्यक्ति है धार्मिक पद्धति से उनका गुणगान करता है तो वह क्षत्रिय लोग भी धर्म में और प्रगतिशील होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं और इस तरह से समाज का कल्याण होता है। तो सारांश में हमने आज देखा किस तरह से जो भागवतम की पहले स्कंद की पार्श्वभूमि तैयार की जा रही है परीक्षित महाराज की गुणगान बताने के लिए उनका पूर्वजों का गुणगान बताया जा रहा है पांडवों का। और फिर हमने देखा कि गुणगान और करना और चापलूसी करना इसमें फर्क क्या है कि जब स्वार्थ का भाव होता है तो हम दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों को एक औजार के रूप में लेके खुद के जो इच्छाएं पूरे करने का प्रयास करते हैं तो यह मिथ्याहंकार के स्तर पर है। मानवीय स्तर पर जो है कि हम दूसरों को सराहना करना चाहते, दूसरों को मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरों के प्रति स्नेह है और उनका कुछ गुणगान करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। और उससे ऊंचा है कि हम आध्यात्मिक स्तर पे देखते हैं कि जो हर एक व्यक्ति है वो भगवान का अंश है और भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है हर एक व्यक्ति को, तो हम सबको एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो जो बाह्य जो कमियों का आवरण है उसके परे जाकर हम जो अंदर से जो सोना है भगवान का अंश है हर एक व्यक्ति उस पे केंद्र देकर उसको बाहर लाने के लिए जैसे डॉक्टर मरीज को दवाई देता है और उसको प्रोत्साहन देता है वैसे ही हम भक्ति के बारे में लोगों को बताते हैं और भक्ति में प्रोत्साहित करते हैं तो इससे हम सब प्रगति कर सकते हैं भगवान के धाम की ओर। किसी कोई सवाल है? कभी हम जानते हैं कि भक्त दुर्लभ है फिर भी हम भक्तों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, ऐसे क्यों होता है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं? वास्तव में जो कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति है उसका अनुशीलन करना होता है। तो जो आदत है किसी आध्यात्मिक तत्व को मन में रखने की उसका बार बार हम श्रवण करते हैं, उसका मनन करने का प्रयास करते हैं तो उससे उसका अनुशीलन होता है। तो कोई अगर भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, जब स्मरण आ जाता है तो पुनः हम उसको कार्य कर सकते हैं, उसको पुनः हम हमारे जीवन में अमल करा सकते हैं। ऐसे बताया जाता है कि अगर कोई हवाई जहाज अगर बेलगांव से बॉम्बे जा रहा है तो 90% समय वो हवाई जहाज जो होता है वो रास्ते से गलत रास्ते पर जा रहा होता है। क्यों, क्या होता है, जब वो आसमान से जा रहा है तो हवा का प्रवाह होता है, कोई बादल होते हैं, कोई वातावरण की परिस्थिति होती है, तो वो हवाई जहाज कभी भी सीधे रास्ते पे जा नहीं पाता है। तो फिर भी वो कैसे पहुंच जाता है बंबई, क्योंकि वो जब समझ जाता है कि अभी थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया तो पुनः सही रास्ते पे आ जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है पुनः सही रास्ते पे आ जाता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी को स्टीयरिंग व्हील पे पकड़ के रखते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो होता है पकड़ेगी नहीं तो अपने आप गलत दिशा में चली जाएगी, तो थोड़ा सा वापस लाना पड़ता है। तो उस तरह से क्या होता है, हमारे मन के पूर्व प्रवृत्ति के कारण हम गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इससे हताश नहीं होना है, ये अपेक्षित ही है, पर ये अपेक्षित है पर इसका मतलब नहीं है कि ये अनिवार्य है, वो होगा पर उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि मैं भी गुमराह हो गया हूँ तो फिर हम उसको पुनः पलट सकते हैं, उसको सही दिशा में आ सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अगर हम देखें कि मैं गलत रास्ते में चला गया तो भी छोड़ दो सब कुछ, नहीं, हम भले ही इतना गुमराह हो कि इधर उल्टा जाने लग गए फिर भी हम पुनः मुड़ के वापस आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो मन की प्रवृत्ति है वह उसको कोई जादू से अपने आप परिवर्तित नहीं होने वाली है, उसको हमें अपेक्षित होना चाहिए कि वो उमराह करेगी मुझे, पर जैसे ही मुझे स्मरण में हो जाएगा तो पुनः मैं सही रास्ते में आ जाऊंगा। और जितना हम ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे वो सही रास्ते में हम रहेंगे और फिर वो गुमराह करने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी।